ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपशिष्टः कुहकस्तक्षको वा दशपलं गायत विष्णुगाथा।
Translation and purport by Srila Prabhupada. Translation. O Brahmanaj, just accept me as a completely surrendered soul and let Mother Ganga, the representative of the Lord, also accept me in that way. For I have already taken the lotus feet of the Lord into my heart. Let the snake word or whatever magical thing the Brahman created bite me at once. I only desire that you all continue singing the deeds of Lord Vishnu. Purport. This is a verse from Srimad Bhagavatam 1.19.15 spoken by Maharaj Parikshit while he was sitting on the bank of the Ganges expecting to be beaten by a snake bird summoned by the curse of Brahman boy named Sringi, who was the son of great sage named Samik. News of the curse was conveyed to the king, who prepared for his imminent death. Many great saintly persons, sages, Brahmanas, king and demigods came to see him in his last days. Maharaj Parikshit, however, was not at all afraid of being bitten by the snake bird. Indeed, he requested all the great personalities assembled to continue chanting the holy names of Lord Vishnu. Jagat Guru Srila Prabhupada ki.
जैसा कि मैं कहा था पहले, जब भाव का अंकुर उग जाता है भक्त के हृदय में तो 9 लक्षण उपदित होते हैं। उसमें पहला है शांति। शांति का अर्थ है सहनशीलता। इस प्राकृतिक जगत में कभी कभी बहुत हानि हो सकती है, स्वजन का मरण हो सकता है, अपने पर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है, लेकिन उस दशा में भी भक्त विचलित नहीं होता है। तो इसमें रूप गोस्वामी पाद जी उदाहरण दिए हैं पहले महाराज परीक्षित का। महाराज परीक्षित के जीवन में ऐसी घटना घटी कि वे एक बार गए थे जंगल में, घूम रहे थे, हिंसक जीवों का वध कर रहे थे, तो उनको बहुत जोर की प्यास लग गई और भूख भी लग गई, बहुत जोर की। वैसी भूख और ऐसी प्यास कभी भी अनुभव नहीं किए थे। इतनी भूख लग गई और प्यास की, प्यास के मारे छटपटाने लगे। कहीं पानी नहीं मिला तो वे ढूंढते ढूंढते एक कुटिया में पहुंच गए। एक ब्राह्मण की कुटिया थी साधु की, तो उसमें पहुंच गए तो देखे कि वे ध्यान में बैठे हैं। और महाराज परीक्षित के मन में यह बात आई कि ये हमको देख करके ध्यान का नाटक कर रहा है, हमारी उपेक्षा कर रहा है। तो उन्होंने जोर से पानी मांगा, जलम देही, बहुत उच्च स्वर से, लेकिन कंठ सूखा हुआ था, पूरा बोल नहीं पाते थे, जलम देही दो तीन बार उन्होंने कहा, लेकिन वो ब्राह्मण जगे नहीं ध्यान से। तो महाराज परीक्षित को उनके प्रति अमर्ष हुआ, मन में दोष बुद्धि आई, उन्होंने सोचा कि जान बुझ करके हमारी उपेक्षा कर रहा है, मैं पानी के बिना मर रहा हूं, मुझे पानी नहीं दे रहा है। तो इस क्रोध में वे एक मरा हुआ सांप धनुष के नोक से उठाए और उस ब्राह्मण के गले में लगा दिए। वो बहुत तेजस्वी ब्राह्मण थे, उनका नाम था समीक मुनि, समीक नाम था। तो महाराज ने सोचा कि ये मेरा स्वागत नहीं कर रहा है, मुझको माला नहीं पहनाया तो मैं इसको माला पहना देता हूं। मरा हुआ सांप गर्दन में लपेट दिए और वास्तव में वे ध्यान में थे, मुनि भगवान के ध्यान में थे। वे नहीं जाने कि हमारे कुटिया में राजर्षि परीक्षित महाराज आए हैं। इस तरह उनके गले में सांप लपेट करके वे चले गए। तो उनका पुत्र अन्य ऋषि बालकों के साथ खेल रहा था, तो किसी बालक ने कहा कि तुम्हारे पिता को सांप काट दिया है। राजा परीक्षित आया था और वो देह पर सांप चढ़ा दिया है, वो निश्चित दंश दिया होगा। तो बच्चा आया नहीं, आने के पहले बहुत क्रोध में हो गया ब्राह्मण कुमार और कहने लगा, ऐसा साहस हो गया राजा का, जब भगवान कृष्ण चले गए तब राजाओं की शान बढ़ गई, अब ये लोग पाप करने लगे, अब मैं उसको सिखाऊंगा। वह क्रोध में जाकर के कौशिकी नदी के जल में जल को हाथ में लिया और साप दिया। दुर्बुद्धि कुलांगार परीक्षित को आज से सातवें दिन तक्षक नाग डसेगा और मर जाएगा। यह ब्राह्मण का साप था, अमोघ था, इसकी खबर महाराज परीक्षित को नहीं थी। वे चले आए अपने गांव में, अपने घर हस्तिनापुर। तो लेकिन रास्ते में ही वे बहुत चिंता में पड़ गए। महीपतिस्तत तत्कर्म गर्ह्यम विचिंतन आत्मकृतम सुदूर मना। वे बहुत खिन्न हो गए, अपने किए हुए काम पर पछता रहे थे कि मैंने बहुत पाप किया, एक भक्त के गले में सांप लपेट दिया। अहो मया नीच मनार जगत कृतम, अहो मैंने बहुत नीच कर्म किया। जैसे अनार्ज मूर्ख नीच व्यक्ति कर्म करता है, वैसे मैं किया। एक मुनि के गले में सांप लपेट दिया, बहुत दुख की बात है। वे ब्राह्मण बेचारे हमारा कोई अपराध नहीं किए थे, हमें वचन से भी कभी कुछ गलत नहीं बोले, फिर भी उनके साथ मैं ऐसा व्यवहार किया। बताए कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा है और भगवान का भजन कर रहा है और उस समय कोई लेकर के सांप लपेटे उसके गर्दन में, तो महाराज परीक्षित इसको बहुत बड़ा अपराध मान रहे थे। यद्यपि ये बहुत बड़ा अपराध नहीं था, थोड़ा अपराध था, लेकिन महाराज परीक्षित इसको बहुत बड़ा मान रहे थे। दिरागसी ब्रह्मणी गूढ़ तेजसी, वह ब्राह्मण बेचारा अपने ब्रह्म तेज को छिपा करके कुटिया में बैठा था और ऐसे निरपराध महात्मा का मैं अनादर किया है, प्रणाम भी नहीं किया, सीधे ले जाकर के सांप लपेट दिया। तो महाराज परीक्षित इस अपराध को बहुत बड़ा अपराध मानते थे। एक बार महात्मा गांधी जी के पास एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि ये तुलसीदास और सूरदास जो बड़े बड़े भक्त हैं इतना झूठ क्यों बोलते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, और सूरदास जी ने भी कहा है मौसम कौन कुटिल खलकामी, ज्योतन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। तो वो व्यक्ति तर्क कर रहा था महात्मा गांधी से कि जब इतने बड़े बड़े महात्मा लोग इस तरह झूठ बोलेंगे, जब पापी नहीं है तो अपने को क्यों पापी कहते हैं, तो दुनिया क्या सीखेगी। तो बहुत सोच करके महात्मा गांधी ने कहा कि उनका आत्म समीक्षा का जो मीटर है वो दूसरा है, तुम्हारा दूसरा होगा। वो लोग थोड़े गलती को भी बहुत ज्यादा मानते हैं, उनका मीटर ऐसा है। अगर सूरदास जी कहते हैं कि मेरे समान कौन खल है, कौन कामी है, और तुरंत लिखते हैं ना कि जो तन दियो ताहि बिसरायो, जिस भगवान ने हमको यह मानव शरीर दिया मैं उनको बिसरा दिया, भजन नहीं किया, यही बहुत बड़ा पाप है। तो वे लोग छोटे छोटे पाप को ही बहुत बड़ा मानते थे, और नीच आदमी बड़े पाप को भी हल्का मानता है। ये महात्मा गांधी ने उत्तर दिया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी इस घटना को बताए हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार महाराज परीक्षित अपने थोड़े से किए गए पाप को बहुत ज्यादा मान रहे थे और बहुत अफसोस में थे। इसी तरह से वे अफसोस करते करते अपने घर आए। जब घर आए तो विचार करने लगे, ध्रुवम ततो में कृतदेव हेलना ध्रुवत एवं व्यसनम नत दीर्घात तदस्तु कामम यघनिष्कृताय में। निश्चित है मेरे जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आनी चाहिए, आज ऐसी विपत्ति आनी चाहिए, जल्दी अविलंब कोई देर नहीं होनी चाहिए, ऐसी विपत्ति आवे, ऐसा संकट आए कि मेरे पाप की शुद्धि हो जाए, अघ निष्कृता है, मेरा अघ समाप्त हो जाए। ये कामना करने लगा कि बहुत अधिक विपत्ति हम पर आवे, अद्दैव राज्यम बलमृद्ध कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुला नलों में दहत अभद्र स पुनर्मे भूत पापी असी धीर दिजदेव गोभ्या। आज ही उस ब्राह्मण के क्रोधाग्नि में हमारा राज जल जाए, हमारी सेना और हमारा समृद्ध धनागार सब जल जाए। आज ही जिसके अभिमान में मैं सब किया कि मैं राजा हूं और मेरा स्वागत क्यों नहीं किया ब्राह्मण, तो इस यह अभिमान हमारा मिट जाए, हमारा राज जल जाए, हमारी सेना जल जाए, और इस तरह से मैं दीन हो जाऊं। जल जाए का मतलब है कि कोई ऐसी व्यवस्था ईश्वर के द्वारा हो कि मेरा राज चला जाए, मेरी सेना नष्ट हो जाए, मेरे शरीर की शक्ति खत्म हो जाए, सब कुछ, जिससे मुझमें ऐसी पाप बुद्धि न हो, किसी ब्राह्मण के प्रति या देवता के प्रति या गौ के प्रति हमारे मन में कभी दुर्भावना न आवे। पापी सिद्धिर द्विजदेव गोभ्य, ब्राह्मण के प्रति, देव के प्रति और गौओं के प्रति कभी दोष बुद्धि न हो। मतलब मेरे पास कोई भी धन आदि न रहे जिससे मैं अहंकार में किसी का अपमान न करूं। सचिंतन निथमथा श्रृणोत जथा मुने सुतोक्त निरतिस्तक्ष काख्या साधु में नचीर्ण तक्ष का नलम प्रसक्त से विरक्ति कारण। इस प्रकार सोच ही रहे थे कि समीक मुनि ने अपने एक शिष्य को भेजा महाराज परीक्षित के पास यह सूचना देने के लिए कि हे महाराज, आपको मेरे पुत्र ने, मेरे अबोध पुत्र ने साप दे दिया है, आप केवल 7 दिन जिएंगे, 7 दिन में आपको अपने परलोक के लिए जो कुछ भी करना जरूरी है आप कर लीजिए। समीक ऋषि ने सोचा कि कहीं राजा असावधान रहेंगे, राज काज में रहेंगे और उसी समय तक्षक डस दिया तो उनकी दुर्गति होगी, इसलिए मरने से पहले तैयारी कर लें, जो उनकी दृष्टि में श्रेय है भगवान का धाम, भगवान की सेवा, तो उसकी प्राप्ति के लिए वो यत्न कर रहे हैं। 7 दिन ही केवल कर पाएंगे। तो अपने एक शिष्य से उन्होंने खबर दे दिया। उस शिष्य का नाम था गौरमुख। गौरमुख शिष्य के द्वारा एक खबर दिया मुने सुतोक्त नृत्य तक्ष का क्या, उसमें साफ है समीक मुनि ने कहा कि मेरे पुत्र ने आपको साप दे दिया है, वो अबोध बालक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, उस साप को लौटाया नहीं जा सकता, तो आप अपने कल्याण के लिए साधन कर लीजिए, अब आप केवल 7 दिन ही जिएंगे। अथो विहाय ममुं च लोकम विमर्शितौ हे तया पुरस्तात। तो महाराज परीक्षित इस लोक के भोग को और परलोक के भोग को सबको पहले से ही हे समझते थे, तुच्छ समझते थे। जब वो राज करते थे, राज करने की जब उनको इच्छा थी, राज कर रहे थे, उस समय तो भाव यह था कि भगवान कृष्ण की इच्छा है और महाराज युधिष्ठिर का ये उत्तराधिकार मिला है तो हमें अच्छा से राज करना चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए। लेकिन उस समय भी उनकी ये भावना थी कि राज तो ठीक है लेकिन राजकीय भोगों को भोगना इस लोक में और परलोक में स्वर्ग प्राप्त करना है, ये सब बिल्कुल हेय है, किसी काम का नहीं, अकिंचित कर है। महाराज परीक्षित पहले से ही ये जानते थे, निश्चय कर चुके थे, और जब ब्राह्मण के साप का पता हुआ तो सब कुछ छोड़ करके, राज्य भी छोड़ छाड़ करके, गंगा जी के किनारे चले गए। अथो विहाय ममुम चलोकम विमर्शितौ हे तया पुरस्तात। पहले से ही स्वर्ग को और इस जगत के भोगों को महाराज परीक्षित है ये समझते थे। है का अर्थ है तुच्छ, ये किसी काम के नहीं है, इनसे कोई लाभ नहीं है। कृष्णांग्रि सेवा मधिमन्य मान, और उनकी दृष्टि में किस चीज का महत्व था? कृष्णांग्रि सेवा, श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा करना, बस यही उनके दृष्टि में पुरुषार्थ था, सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते थे। अर्थ धर्म काम मोक्ष इनको बिल्कुल तुच्छ समझते थे और भगवान की सेवा को सबसे बड़ा मानते थे, अधिमन्य मान अधिक मान्यता देते थे। तो इसको ऐसा मानते हुए कि भगवान के चरण कमल की सेवा हमको कैसे मिलेगी, ये विचार करके वे गंगा जी के किनारे गए। उन्होंने विचार किया कि यह विष्णु पदी है, भगवान के चरण कमल से निकली है, तो इसके आश्रय में रहने पर मैं भगवान की सेवा पा सकता हूं। ये विचार करके गंगा जी के किनारे चले गए, ये उनका मनोभाव था। इस पर एक भक्त लिखते हैं कि महाराज परीक्षित ने सोचा कि मैं एक भक्त का अपराध किया हूं, ब्राह्मण का अपमान किया हूं, और भगवान कृष्ण ब्रह्मांड देव हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं, तो वे इस अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं और मां हैं, तो वे अवश्य हमारे अपराध को क्षमा करेंगे, इसलिए वे गंगा जी के शरण में गए। और वहां जाकर के उन्होंने विचार किया कि जब तक जीना है तब तक अब पानी नहीं पीऊंगा और भोजन नहीं करूंगा। जिस प्यास के चलते, पानी की लालसा के चलते मैं मुनि के गले में सांप डाला हूं, अब पानी नहीं पीऊंगा, जब तक जीऊंगा तब तक। तो पानी और भोजन त्याग करके, अनशन व्रत लेकर के गंगा जी के तट पर बैठ गए। महाराज परीक्षित का यह निर्णय बहुत से सुंदर था। जब वे गंगा जी के तट पर बैठे तो मुनि व्रत, मुनियों जैसा व्रत लेकर के बैठे, अब चुपचाप भगवान का नाम लेते थे और कुछ भी बातचीत नहीं, कोई राजकीय परामर्श नहीं, कोई मिनिस्टर से बातचीत नहीं, स्त्री वगैरह को तो पहले ही छोड़कर चले आए थे, अपने पुत्र को जन्मेजय को राज दे करके चले आए, और इसके बाद कोई परामर्श नहीं दिए बहुत कि ऐसे शासन करना, ये नियम है, ऐसा ये सब कुछ नहीं, चले आए सीधे, और यहां आकर के किसी से बातचीत नहीं। मुनि व्रत अनन्य भाव, और उनका अनन्य भाव था, अन्य में भाव नहीं था, केवल कृष्ण में भाव था। किसी ज्ञान या कर्म में उनकी मति नहीं थी कि यह कर्म जरूरी है, यह करना चाहिए, नहीं, या ये ज्ञान श्रेष्ठ है, यह ज्ञान लेना चाहिए, ये कुछ भी नहीं। ज्ञान और कर्म में उनकी मति नहीं थी, केवल भगवान के चरणों में मति थी। दध्यो मुकुंदांग्री, भगवान मुकुंद के चरण कमल को अपने हृदय में धारण किए, भगवान का चिंतन करने लगे और बैठ गए अनशन। आमरण अनशन का संकल्प लेकर तत्रोपजगमूर भुवनम पुनाना महानुभावा मुनयो सशिष्यः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं ही तीर्था निपुनन्ति संतः। उस समय पूरे ब्रह्मांड में एक खबर फैल गई, हल्ला हो गया। एक से एक ऋषि हैं सर्वज्ञ, वे लोग इस बात को फैला दिए कि महाराज परीक्षित जो इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, वे राज छोड़ करके आमरण अनशन व्रत लेकर के गंगा जी के तट पर बैठ गए शरीर त्यागने के लिए। तो महाराज परीक्षित बहुत बड़े राजर्षि थे और भगवान के परम भक्त थे, जिनकी रक्षा भगवान कृष्ण ने गर्भ में किया था। माता उत्तरा के गर्भ में जा करके भगवान ने रक्षा किया था परीक्षित की। और जन्म लेने के बाद उन्होंने राज किया, तो राज करने में साक्षात कलयुग का दमन किया। कलि को भी उन्होंने दबा करके रखा है। जब तक परीक्षित का राज रहा तब तक कलि उनके राज में दखल नहीं दिया। इतने प्रतापी राजा थे। तो वे जब गंगा जी के तट पर बैठे आमरण अनशन व्रत लेकर के, तो हल्ला हो गया पूरे ब्रह्मांड में। तो जितने भी बड़े बड़े महात्मा थे, ऋषि मुनि और देवता भी और मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ थे राजागण, ये सब जुटने लगे। तो शुद्ध गोस्वामी कहते हैं तत्वोप जगमूर भुवनम पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्या। जो भुवन को पवित्र करने में समर्थ हैं, वे महान प्रभावशाली मुनिजन अपने अपने शिष्यों के साथ वहां आए, गंगा जी के तट पर आए जहां महाराज परीक्षित बैठे थे। तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि क्या वे तीर्थ करने के लिए आए, गंगा जी में स्नान करने के लिए? तो वो कहते हैं नहीं, संत लोग तो तीर्थ को भी शुद्ध करने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। मुनियों के मन में यह बात नहीं थी कि सुत गोस्वामी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। मुनियों के मन में, साधुओं के मन में ये नहीं था कि हम स्नान करेंगे तो गंगा जी शुद्ध हो जाएंगे, परंतु यह उत्प्रेक्षा है कि ये लोग भी तीर्थ में घूमते रहते हैं। तो तीर्थ में घूम घूम करके मानो ऐसा लगता है कि वे तीर्थ को ही शुद्ध कर रहे हैं। तीर्थ में और वैष्णव में, वैष्णव श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान गदाधर गोविंद उन लोगों के हृदय में रहते हैं। तो भगवान को अपने हृदय में लेकर के सब जगह जाते हैं, तो वे तीर्थों को सुतीर्थ बना देते हैं। सब ऋषि मुनि वहां आए, सुत गोस्वामी गिना रहे हैं कौन कौन लोग आए। अत्रिर वशिष्ठ चवन शरदवान अरिष्ट नेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरो। वहां आ गए अत्रि, तो बड़े बड़े ऋषि हैं, वशिष्ठ मुनि, च्यवन शरदवान अरिष्ट नेमि भृगु और अंगिरा। भृगु जी जो ब्रह्मर्षियों में बहुत श्रेष्ठ हैं वे, और अंगिरा पराशर गाधी सुत श्री विश्वामित्र जी। राम भगवान परशुराम उस समय वे युद्ध आदि नहीं करते थे, अब महात्मा हो गए थे भगवान परशुराम, उत्तप्त थे, इंद्र प्रमद युद्ध बाहु मेधातिथि देवल आष्टिसेण, मेधातिथि देवल आष्टिसेण और भरद्वाजो गौतम पिपलाद, भरद्वाज पिपलाद गौतम मैत्रेय मुनि औरव मुनि कवसह कवस मुनि और कुंभजोनी श्री अगस्त मुनि द्वैपायन भगवान वेदव्यास देव भगवान नारद सर्वज्ञ नारद मुनि ऐसे महात्मा वहां आ गए। अनेक ऋषि मुनियों के गोत्र में जन्म लिए हुए महात्मा आ गए और ब्रह्मर्षि महर्षि राजर्षि राजर्षियों में जैसे अरुण सबसे प्रधान है वे सब लोग आए, सभी ब्रह्मर्षि गण आए राजर्षि गण आए और देवर्षि देवता लोग भी आए। महाराज परीक्षित इतना प्रसिद्ध और प्रिय थे कि उनके इस अंतिम दिनों में उनसे भेंट करने के लिए सब ऋषि मुनि आए। तो राजा परीक्षित सबका जथा योग्य सम्मान किए, सत्कार किए और प्रणाम किए। सुखोपविष्टे सुथतेषु भूया कृतः प्रणाम स्वचिकीर्षितम् जत। जब सभी ऋषि मुनि सुख से बैठ गए तो महाराज परीक्षित फिर से प्रणाम किए। ये खड़ा हो गए थे और खड़ा होकर के फिर प्रणाम किए, अपने मस्तक से भूमि का स्पर्श किए, साष्टांग प्रणाम, और अपना जो चिकित्सित था अपना जो विचार था वे रखे ऋषियों के सामने कि मैं अनशन व्रत करने जा रहा हूं। और उन्होंने कहा इस विषय में आप लोगों का क्या विचार है, वे सुनना चाहते थे। विज्ञापयामास विविक्त चेता, उनका हृदय बिल्कुल शुद्ध था, वे अपनी भावना को रखे ऋषियों के सामने। उपस्थितोग्रे भी गृहित पाणी, सभी ऋषियों के सामने वे हाथ जोड़ करके खड़े थे और प्रणाम के फिर प्रणाम के दोबारा प्रणाम इसलिए किए कि अब कुछ पूछना था, कुछ पूछने के लिए प्रणाम करना चाहिए, केवल अंगुली दिखा करके नहीं पूछना चाहिए। जैसा भक्तों में ये देखा जाता है आई हैव वन क्वेश्चन, तो इस तरह महाराज परीक्षित नहीं पूछे, कुछ कुछ पूछना था तो उन्होंने फिर से प्रणाम किया, कृत प्रणाम, और फिर पूछे। पहले निवेदन करने लगे कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं बहुत पापी हूं, मूर्तिमान पापी हूं, मैंने एक भक्त के गले में सर्प लपेट दिया, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, ये कह रहे हैं। तो उसी के बाद यह श्लोक है, तम ऐसे महापापी तम ऐसे महा अपराधी मां माने माम ऐसे महापराधी मुझको हे ब्राह्मणों संबोधन के हे ब्राह्मणों ऐसे महा अपराधी मुझको आप लोग अपनी शरण में आया हुआ जानिए प्रत्यंत प्रत्याइए मानिए हम आपकी शरण में हैं। उपयातम उपमन निकट यातम मैंने आया हुआ निकट आया हुआ आपके पास शरण में आया हूं आपकी शरण में हूं तमोपयातम प्रत्यंत विप्रा हे ब्राह्मणों आप लोग और माता गंगा गंगा च देवी जो भगवान के चरणों से निकली हैं वे गंगा जी और आप लोग आप सब हमें अपनी शरण में आया हुआ जानिए मैं आपके शरण में हूं और अपनी स्थिति बता रहे हैं कि हमें इसकी कोई चिंता नहीं है कि तक्षक हमको दसेगा ब्राह्मण के द्वारा उपसृष्ट उत्पन्न किया हुआ चाहे तक्षक मुझे दसे या तक्षक के अलावा जैसे कृत्या आदि से या अन्य कपट से किसी दूसरे मंत्र तन से किसी तरह से मेरा वध हो ये इसकी मुझे चिंता नहीं तक्षक मुझे दसे चाहे किसी कपट से मुझे मारा जाए कोई चिंता नहीं दसतु अलम तक्षक दसे हमको खूब दसे अलम दसतु यथेच्छ रूप से हमको दसे जितना दसना है दसे जैसे हमारे शरीर को नष्ट करना है किया जाए हमको इसकी चिंता नहीं है हमारी केवल यह लालसा है कि आप लोग इतने बड़े बड़े भगवान के भक्त आए हैं सभी लोग गायत विष्णु गाथा हम लोग भगवान के नाम को गाइए या भगवान की कथा कहिए बस यही चिंता है हमें यही लालसा है कि हमें भगवान की कथा मिलनी चाहिए विष्णु गाथा विष्णु के गुणों का वर्णन कीजिए उनका नाम गाइए इतने बड़े राजर्षि थे परंतु उनको अपने मरने की कोई चिंता नहीं तक्षक डसे चाहे किसी अन्य उपाय से मारा जाए हमको इसकी चिंता नहीं इसको कहते हैं शांति भगवान कृष्ण में प्रेम हो गया था इसलिए शरीर के प्रति इस प्रकार की अनास्था है अनासक्ति है इसके बाद वाले श्लोक में महाराज परीक्षित कहते हैं पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत् सुजाम जाम उपयामि सृष्टिम् सर्वत्र मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः मैं जिस योनि में जन्म लू मेरा जहां भी जन्म हो तो पुनश्च फिर भगवान कृष्ण में हमारा प्रेम हो यही आप लोगों के चरणों में भीख मांग रहा हूं और अपनी रक्षा के विषय में कोई उपाय नहीं पूछ रहा हूं कि कैसे तक्षक के विष से बचूंगा बस मेरी यही इच्छा है कहते हैं कि जिस योनि में मैं जन्म लूं जिस शरीर में जाऊं भगवान कृष्ण में हमारा प्रेम बना रहे और भगवान कृष्ण के भक्तों में तदाश्रयेषु जो उनके आश्रय में रहते हैं भगवान के तो उन भक्तों में हमारा प्रसंग हो प्रकृष्ट संग हो उनका संग सदा मिले भगवान कृष्ण में हमारी रति हो और भगवान के भक्तों में भक्तों का संग हमें मिले उनकी सेवा मिले और मैत्रेस्तु सर्वत्र, और सर्वत्र सभी जीवों के प्रति, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य देवता, सभी जीवों के प्रति हमारी मित्रता हो। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के चरणों में मैं नमस्कार करके भीख मांग रहा हूं। मैं अपनी रक्षा के विषय में कोई जिज्ञासा नहीं करता, हमें मरने की कोई चिंता नहीं है। चिंता एक ही है कि जब भी मेरा जन्म हो, जहां भी, तो वहां भगवान से हमारा प्रेम होना चाहिए और भगवान के भक्तों से संग और सभी जीवों के प्रति मित्रता, किसी को कोई मुझसे कष्ट ना हो, सर्वत्र सभी जीवों के प्रति मित्रता। सभी जीव कृष्ण के हैं, कृष्ण के ही अंश हैं, इसीलिए सबसे प्रेम करना चाहिए। एक चींटी को भी अनावश्यक रूप से कुचलना नहीं चाहिए। कीड़े मकोड़े भी कहीं चल रहे हैं तो उनकी भी कोई इच्छा है, कोई इच्छा है, उस इच्छा से प्रेरित होकर के वो कहीं जा रहे हैं। तो मनुष्यों को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही केवल अधिकार रखता हूं चलने का, ये कीड़े मकोड़े क्यों आ जाते हैं हमारे रास्ते में। इस अध्याय का नाम श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं लाइफ अल्टीमेट गोल, जीवन का परम लक्ष्य, ये प्रयोजन तत्व है। तो सभी जीव बढ़ रहे हैं धीरे धीरे भगवान के तरफ। आज जो कीड़ा के शरीर में है, कल विकास करेगा, अब पक्षी के शरीर में होगा, फिर पशु के शरीर में आएगा, फिर मनुष्य बनेगा, मनुष्य से वो फिर देवता बनेगा या भगवान के धाम जाएगा। यह सृष्टि में एक भगवान ने नियम बनाया, क्रम रखा है। तो सभी जीव को जीने का अधिकार है। तो सबको सुख देना चाहिए। महाराज परीक्षित यही प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान में रति, उनके भक्तों का संग और सभी जीवों से मित्रता, किसी से द्रोह नहीं, किसी को सताना नहीं। यह गुण भक्त का होता है, भगवान का प्रेम हो जाने पर यह गुण अपने आप आ जाते हैं। हरे कृष्ण।